السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين. ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلت القدر کی تلاش میں ہیں، اور لیلت القدر انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. بہت سارے لوگ اس بحث میں رہتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے، اس وقت فلاں کی یہ رات چل رہی ہے، ہماری وہ رات چل رہی ہے، اب کون سی رات میں جاگیں، کون سی میں نہیں جاگیں. تو ہم نے ان بحثوں میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ ہر رات کو جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے. جیسے ہم ہر رات میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں ہم جو بھی فالو کر رہے ہیں کیلنڈر، مگر چاہے وہ ایون نائٹ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ پورشن ضرور رکھیں عبادت کے لیے. اور بہترین تو یہ ہے کہ آخری حصہ جو رات کا ہے، آخری تہائی حصہ، یعنی فجر کی اذان سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے سے اگر آپ اٹھ جائیں تو وہ سب سے بہترین وقت ہے. اگر وہ لیلۃ القدر نہیں بھی ہوتی تب بھی اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر رات ہوتی ہیں، اور آخری عشرے کی تو یہ راتیں ویسے ہی بہترین راتیں ہیں سال کی، اور ان کی کوئین نائٹ صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے، ورنہ ویسے تو یہ ہر رات ہی بڑی بابرکت ہے. تو ان راتوں سے ویسے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. اور ایک حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کیوں نہیں بتائی گئی، تو ایک وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بتا دی جاتی، مثلا کہہ دیا جاتا کہ 25ویں رات ہے، تو کیا باقی راتوں میں کوئی جاگتا؟ کبھی بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹ لیں، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا گیا. اب ہر ایک کوشش میں ہے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں. تو بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چلی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں پتہ چلی تھی؟ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی. اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جھگڑے فساد ہیں نا، یہ انسان کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ ان دنوں اور راتوں میں تو کسی قسم کا جھگڑا، آرگیومنٹ میں کسی کے ساتھ پڑھنا، کوئی بحث مباحثے گھروں کے اندر کرنا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قیمتی وقت ہے. ایک تو ضائع ہو رہا ہے وقت، اور دوسرے پھر اس طرح کے کاموں سے خیر سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ یہ جو ہمارا مہمان ہے رمضان، یہ اب بس چند دن کا مہمان رہ گیا، اس نے رخصت ہو جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب مہمان کو رخصت کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، مثلا آپ مثلا کسی کہیں گئے ہیں تو آپ مہینہ بھر بھی رہ لیں، لیکن جب آپ کے جانے کے دن قریب ہوتے ہیں تو گھر والے سارے آپ کی گرد جمع ہو جاتے ہیں، دور نزدیک کے رشتہ دار بھی ملنے آ جاتے ہیں کہ اب تو اسے چلے جانا ہے، وہ زیادہ ٹائم آپ کو دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ مہمان جو ہم سے دور جانے والا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں. अगर घर की सफाई कुछ ज्यादा नहीं भी हो पा रही आजकल तो कोई हर्ज नहीं, अगर कुछ ज्यादा बहुत ईद की खरीदारी नहीं हो पा रही तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उन चीजों में कमी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई आपका ऐसा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन इसमें कमी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान है। और खास तौर पे कुछ जगहों पे आज की रात भी ऑड नाइट है, जिन्होंने एक दिन बाद शुरू किया उनकी ऑड नाइट है, ताक रात है। और जुमे को, यानी जुमे की रात को अगर ताक रात पड़ जाए तो उसके बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो लैलतुल कदर हो। लिहाजा अब देख लें आपके, हमने ये नहीं देखना कि किसकी कब से स्टार्ट हुआ कब से नहीं हुआ, लेकिन हम ये जरूर देखें कि ये जुमे की रात है और कई जगहों पे ताक रात है, तो ये भी एक वैल्यू रखती है, लिहाजा इसकी ज्यादा कदर करें, ज्यादा इसके अंदर एहतमाम करें, ज्यादा इसके लिए कोशिश करें और इसको भी जाने ना दें। हमने कल ही ये नियत की थी, और बहुत सारी नियतें हम कर सकते हैं भलाई के कामों की, जैसे हमने बात की थी कि जब भी आप किसी भलाई की नियत कर लेते हैं तो नियत करने पे ही सिर्फ आपको अजर मिल जाता है, आउट ऑफ रमजान भी आपको एक नेकी का तो अजर मिल जाएगा सिर्फ नियत करने से, और जब कर लेते हैं तो फिर तो और कई गुना बढ़ जाता है, 10 गुना तो गैर रमजान में होता है, और रमजान में सोचे कि हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती। तो इसी तरह अपनी जिंदगी में भी हमने क्या करना है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, ये दिन और रातें, ये जो तन्हाई के औकात हैं, ये इंसान के लिए अपना मुहासबा करने के लिए बड़े ही सूटेबल टाइम है। और कल हमने बात की थी, हमने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देना, हमारा जो जहन हर वक्त किसी चीज में मशगूल है, ऑक्यूपाइड रहता है, इसको ट्रेन करना है, क्योंकि इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, जिक्र भी साथ हो रहा है, साथ कहीं कुछ स्क्रीन पे देखा भी जा रहा है, साथ कुछ और काम इधर उधर के भी निपटाए जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें, कोई भी चीज फिर आपकी बेहतरीन नहीं हो सकती। और रात का वक्त कितना बेहतरीन है कि जिसके अंदर दुनिया सारी सो जाती है, अब भी अगर तन्हाई में भी रह के अगर फोकस अल्लाह ताला की तरफ ना हो तो फिर और कब होगा, दिन में तो बहुत सारे बखेड़े होते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, नहीं तो फोन आ रहा है, नहीं तो कोई और काम धंधे हैं, नहीं तो घर के अफराद के साथ कोई मामलात हैं, तो वो सारा दिन ये चलता रहता है। लेकिन रात का वक्त जब बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है, हर चीज जैसे अपनी जगह पे जाके ठहर गई है और दुनिया सारी सो गई है, उस वक्त कोई बंदा अपने रब के सामने खड़ा होके उसके साथ बातचीत करे। और ये वक्त है कि अपनी जिंदगी को हम जरा झांक के देखें कि कितनी गुजर गई है, पता नहीं कितनी रहती है, क्या तैयारी है आखरत की, क्योंकि वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, एक के बाद एक रमजान आ रहा है, जाने का वक्त भी वैसे ही करीब आ रहा है। ये रातें हैं जिनमें इंसान इस चीज के ऊपर भी गौर करे और ये देखे कि मैं कितना अभी कमाई कर चुकी हूं, बैंक बैलेंस जैसे आप चेक करते रहते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करते रहते हैं, कितना इसमें है, कितना हमने स्पेंड कर दिया, कितना हमने सेव किया हुआ, तो आखरत के अकाउंट में क्या सेविंग है, कितना और करना चाहिए, कितनी कमी है और वो कब करना है, ये सब भी इन रातों में करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं बातें करके चली जाऊं, आपने सुन लिया, कपड़ा झाड़ा और बैठ गए आराम से, नहीं कोई वक्त होता है सीरियस होने का, वी हैव टू बी सीरियस नाउ। जब हमें दाएं बाएं इधर उधर से खबरें आने लगे ना, आपको पता है मैं किन खबरों की बातें कर रही हूं। इंसान को सोचना चाहिए, एक दिन मेरी भी कोई खबर लग जाएगी, ये वहां चली गई, देखो इस उम्र में ही चली गई, कोई भी पता नहीं है किसी का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जो हमारे लिए एक समझ लें कि बहुत आई ओपनिंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको डर होता है कि वो उसको मंजिल पे पहुंचना है, तो वो अव्वल रात में सफर शुरू कर देता है। और जो अव्वल रात में सफर शुरू कर देता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। आगाह रहो, यानी सुन लो, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है और उसका सौदा जन्नत है। अरब में ये होता था कि मुसाफिरों के लिए जब कहीं काफिले यानी सफर के लिए निकलते थे तो रात के वक्त वो निकल जाते थे शुरू हिस्से में, ताकि डाकुओं और इनके हमलों से महफूज होके शहरी तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और इस तरह से वो अपने आप को खतरे से भी बचा लेते थे और मंजिल तक भी पहुंच जाते थे टाइम पे। जैसे हमने कहीं जाना है तो हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, अब हम पहले से निकलते हैं, यानी कि अगर 3 घंटे पहले पहुंचना है तो 3 घंटे पहले हम घर से निकलें, हम उससे भी पहले निकलते हैं। हो सकता है कहीं ट्रैफिक ना हो जाए, हो सकता है कोई और कहीं कोई मसला ना हो जाए, मुझे देर ना हो जाए। जहाँ पे आपको वक्त पे पहुँचने का अपनी मंजिल पे फिक्र होती है ना, खौफ होता है ना, तो पहले से आप तैयारी करके निकलते हैं। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया कि डरने वाला जो मुसाफिर है वो अपने आराम को भी कुर्बान करता है, अपनी नींद को भी कुर्बान करता है, रात के शुरू में ही चल देता है। वो सुबह को भी चल सकता था, क्या जरूरत है रात को, कितनी मुश्किल है रात को सफर करना कि आपकी नींद भी खराब हो रही है, आप चलते चले जा रहे हैं। लेकिन वो किस लिए ये सब सेक्रीफाइस को तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसको अंजाम की फिक्र है, इसलिए कि उसको मंजिल पर पहुंचने की फिक्र है। तो जिसको जन्नत तक पहुंचने की फिक्र हो, उसने जन्नत को अपनी मंजिल बनाया हो, क्या वो अर्ली लाइफ में इसकी तरफ नहीं चलना शुरू कर देगा? या वो ये सोचेगा बूढ़े होके कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है? नहीं, उसको जल्दी चलना है। क्या फिर वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करेगा, क्योंकि उसको मंजिल तक पहुंचना है? और इसको ये ना सोचो कि जन्नत कोई सस्ती चीज है, कोई कम कीमत चीज है, ऐसे ही बस गिरी पड़ी कहीं पे भी मिल जानी है, मुफ्त में ही मिल जानी है। नहीं, क्या फरमाया, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, यानी उसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कहीं चलते चलते इत्तेफाकन ही मिल जानी है, बाय चांस ही मिल जाएगी, ये नहीं हो जाना। तो ये याद रखें, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, उसका सौदा जन्नत है। कौन है आज ये सौदा खरीदना चाहे? जो जो भी ये सौदा खरीदना चाहता है उसको अभी से होश करना है, वो अपनी जिंदगी के एंड पे जाके ये नहीं सोच सकता कि अब मैं सफर शुरू करता हूं, अब तो सफर क्या, अब तो बड़ी दूर जाना था और बड़ी लेट हो गए आप। तो जो उस उम्र को पहुंच चुके हैं, मैं नहीं कहती कि वो नहीं करें, लेकिन असल वक्त ये है कि जो आपकी अभी जवानी है, हिम्मत है, इसमें आप अपना सफर स्टार्ट करें जन्नत की तरफ, इसको सीरियस लें प्लीज, ये ऐसे ही बातें नहीं है। टाइम पास, चलो रात गुजारनी है, चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, यही सुन लेते हैं। यू हैव टू बी सीरियस, वरना कब होंगे? कभी आपने सोचा है कब होंगे? कोई आपके पास टाइम है कि जो आपने जहन में सोच के रखा हुआ है, इस उम्र को पहुंचूंगी तो करूंगी? पहले तो उस उम्र की गारंटी दे दे। मसलन मैं सोचूं कि मैं जब 70 साल की हो जाऊंगी, 60 साल की हो जाऊंगी, तो तब मैं इस तरफ आऊंगी, तो मुझे बताएं उसकी गारंटी मुझे कौन देगा कि मुझे उस उम्र तक पहुंचने की मोहलत भी मिलती है या नहीं? इंसान खुद भी नहीं जानता ये कब उसको यहां से रवाना होना है। एक मुसाफिर है, किस वक्त उसके लिए बुलावा आ जाए। तो ये रातें इस हिसाब किताब को करने की भी हैं, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, इतना जमा है, कितना खो दिया है, इतनी जिंदगी गुजर गई है, कितना कुछ कर सकते थे नहीं किया, चलो अभी कर लें। जैसे इम्तिहान के 3 घंटे होते हैं, जो पहले घंटे में नहीं करता उसको दूसरे जो 2 घंटे हैं उनमें वो भी सारा करना है जो पहले घंटे में करना था। और जिसने 2 घंटे भी गुजार लिए, अब उसका बुढ़ापा चल रहा है, उसको तो और ही ज्यादा फिक्र करनी है कि फिर तो पिछले तो वक्त गुजर गया। तो हर कोई देख ले कि मैं किस जगह पे हूं। जैसे दिन होता है ना, तो दिन एक वक्त में सूरज चढ़ रहा होता है, फिर पूरे जौबन पे आ जाता है, भरपूर जवानी, कोई 30 साल की उम्र कह सकते हैं, 30, 35। उसके बाद फिर जोहर का वक्त आता है, फिर असर का, और फिर एक वक्त आता है तेजी से सूरज अपनी मंजिल की तरफ चल जाता है, मगरिब हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है। जिंदगी का सूरज भी इसी तरह गुरूब हो जाया करता है, पता भी नहीं चलता दिन कहाँ गया। ठीक है, ये आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं मैं कह रही। हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत है, आप कह रहे होंगे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हाँ बिल्कुल बेशक, लेकिन अल्लाह ताला का सौदा बड़ा महंगा है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रही, ये आपके नबी ने आपको बताया, इसके लिए कमर कसने की जरूरत है ना। रमजान में हमसे कुछ हो पाता है, बाकी दिनों में तो वैसे ही नहीं कुछ हो पाता, रमजान भी ढीला ढाला ही गुजरता है, फिर अब रातें आ गई वो भी बस इधर उधर बैठ बूट के गुजर जाती हैं, फिर ना कोई प्लानिंग है लाइफ की, ना कोई कुछ है, कारोबार की प्लानिंग है, कहाँ पे हमने घर लेना इसकी प्लानिंग है, कौन सा कारोबार कल शुरू करना इसकी प्लानिंग है, बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए भेजना इसकी भी प्लानिंग है, पैसे अपने बुढ़ापे के लिए किधर किधर इन्वेस्ट कर दूँ ताकि उस वक्त जब रिटायर हों तो फिर उसके मुताबिक मुझे पैसे मिलते रहें, उसकी भी प्लानिंग है, कभी आखिरत की भी प्लानिंग है? क्वेश्चन मार्क, कोई आखरत की प्लानिंग है कि नहीं है, या वो अभी सोचा ही नहीं? हाँ, अल्लाह अकबर। तो ये दिन है और आते हैं सोचने की, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए चाहे ये वक्त निकालें जिसमें आप अपना हर तरफ से फारिग होके, कुछ पढ़ना नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई दुआ नहीं है, बस बैठें और सोचें और इरादे बांधें, नियतें करें, प्लान करें कैसे आगे चलना है। और हम कहते हैं ना कि क्या करें, दुनिया को भी साथ लेके चलना है, क्या करें, बस ये दीन का ही तो नहीं होके रह जाना, दुनिया भी साथ चलानी है, तो बिल्कुल सही है, दुनिया में आपने रहना, दुनिया को तो चलाना ही है, मगर किसने आपसे ये कहा कि ये दीन और दुनिया अलग अलग चीजें हैं? दीन दुनिया में ही तो अप्लाई करना, दीन क्या है, वे ऑफ लाइफ, तो ये तो दुनिया के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, यहां पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यही तो बताएगा दुनिया में रहने के ढंग क्या हैं, यही तो समझाएगा कैसे यहां पे चलना है। तो हमने इनको अलग अलग खानों में कर दिया, हमने कहा दीन अलग है, जब हम दीन के होते हैं तो फिर बस दुनिया के सारे काम छोड़ना ये मतलब है, और जब दुनिया के होते हैं तो फिर वो दीन कुछ है भी कि नहीं हमारा पता ही नहीं चलता, वो जैसे दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है, दुनिया में रहते हुए इसी के अंदर दीन के ऊपर चलना है, और ये अलग अलग चीजें हरगिज नहीं है, बस ये हमने करना है कि अपने हर काम को जो हम दुनिया में कर रहे हैं, इसकी आज हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने इसको कैसे इबादत बनाना है। हर काम मैंने आप देख लें कि चाहे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, अपने इवन अपनी स्पाउस के साथ हैं, फैमिली टाइम कर रहे हैं, इस सब के अंदर हर हर काम को हमने इबादत बना लेना है, और ये मुश्किल नहीं है, ये बन सकता है। जो ये कहते हैं ना अलग अलग चीजें, हमने दुनिया को भी तो लेकर चलना है, दीन के ही तो नहीं हो जाना, उसका मतलब उसको दीन की समझ ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आई कि दीन है क्या। दीन तो आपको आपके प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, इवन यहां तक कि आपके पालतू जानवरों के साथ भी आपका क्या रवैया होगा वो बताएगा, डीलिंग्स कैसे करनी है वो सिखाएगा। और ये सब जब अल्लाह ताला की रजा के लिए हो जाए तो यही इबादत बन जाएंगी। कितनी खुशकिस्मती है ना कि हमारा हर काम इबादत बन जाए, हर काम, हत्ता कि ये जो हम खाते पीते हैं सोते हैं ये भी इबादत बन जाए। और ऐसे लोग हैं, किसी का पता चला कि वो सुभान अल्लाह ऐसे हैं कि उनकी, ये बता रहा था कि वो यानी बात भी करते हैं तो इतनी नपी तुली, कोई हरकत भी उनकी होती तो इतनी ज्यादा जैसे सोच के होती है कि ये भी मैंने अल्लाह की खातिर करनी है, ये भी अल्लाह की खातिर हो, ये मेरा बोलना भी अल्लाह की खातिर हो, ये मेरा चलना भी अल्लाह की खातिर हो। जब इंसान कॉन्शियस जिंदगी गुजारता है ना तो फिर वाकई कोई भी मामला हो उसी के अंदर आपको अजर सवाब मिल जाएगा। हकूक अदा करनी है, काम कारोबार करना है, बस अगर आपको पता है, अपने दीन की समझ है, आप कॉन्शियस हैं, मोहतात हैं, तो रोजमर्रा जिंदगी के जितने काम हैं आपके, हर एक काम आपकी इबादत बन जाएगा। ये नहीं फिर कहना कि बस करना है तो करना है, काम है ठीक है, काम है क्या करें, करना पड़ता है, नहीं, कॉन्स्टेंटली जहन में ये हो कि मेरा ये काम मेरे रब के लिए हो जाए, मैंने अपने हर काम को अपनी ये नेकी बनाना है, एंड इट इज पॉसिबल। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे पॉसिबल है हर काम, और यही दीन सिखाता है ना, कन्वर्ट कर लें। आप देखें जैसे आप किसी मुल्क में जाते हैं ना तो आप अपना स्टेटस कन्वर्ट करते हैं, अब आप वहां के बाशिंदे बन लगे, क्योंकि वहां पे आपका वो स्टेटस नहीं काम आएगा जो कि आपका पहले था, फिर आप अपना स्टेटस चेंज कराते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, या पैसों का सोच लें, आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहां की करेंसी आप कन्वर्ट करा के लेकर जाते हैं, या वहां कराते हैं कन्वर्ट, क्यों, इसलिए कि वहां पे वही चलती है। तो आखरत के बाजार में भी जो सिक्का चलेगा वो आपको यहां से कन्वर्ट करा के लेके जाना होगा। और इसके लिए आपको ऐसी नियतें करनी होंगी कि सारे ही काम नेकियां बन जाए। आप ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मियां बीवी के ताल्लुक के लिए भी जो दुआ बताई है और उसको भी नेकी करार दिया है। जब इंसान ये सोच लेता है ना, ये नहीं सोचता कि बस ठीक है ये तो मेरी जरूरत है ही, नहीं, ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, इससे भी अल्लाह राजी होता है, इस काम से भी कोई काम नेकी बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, एक मिसाल है सोना आपका रात को, ये क्या ये मुबाह है? मुबाह किस काम को कहते हैं जिसपे ना कोई अजर मिल रहा है ना कोई गुनाह है। लेकिन अगर आप इसको इंजेक्शन लगा देंगे ना ऐसी एक नियत का, तो ये सोना भी आपकी इबादत बन जाएगा, सोना भी आपकी नेकी बन जाएगा, सोने पे भी आपको अजर मिलेगा। यानी हर चीज को नेकी में कन्वर्ट करना है। अब आप खुद सोचें, आप मसलन एक आप या कोई भी एवरेज इंसान कितने घंटे सोता है रात को? 7 से 8 घंटे, 24 घंटों में से 8 घंटे निकालें तो वो क्या बनते, 1/3 बन गए, ठीक है। अब वो अपनी जिंदगी में हर 24 घंटे में 1/3 हिस्सा नींद के लिए निकाल रहा है, तो साल का 1/3 कितना हो गया, 4 महीने हो गए। और उसकी अगर जिंदगी 60 साल की है तो उसका 1/3 कितना हो गया, 20 ईयर्स, 20 साल, ये उसका 1/3 है वो सोने में गुजार देता है। 60 में से 20 साल तो सोने में ही गुजर गए। अब अगर इसने इसको नेकी में कन्वर्ट नहीं किया तो आखिरत में इसके ऊपर कोई अजर नहीं है, सजा तो नहीं है, मगर कितना अच्छा हो कि ये भी नेकी बन जाए। ये मेरी हिर्स क्यों नहीं, जैसे कारोबारी लोग होते हैं ना, वो क्या हर चीज में सोचते हैं इसको कैसे मैं कैश करा लूं, इससे भी कैसे पैसे बना लूं, यानी हर चीज के अंदर उनकी ये होती है लगन। तो हमें क्यों नहीं है ये हिर्स कि इसको भी मैं अपनी नेकी में, जैसे वो कह रहा है ना, मैं इसको भी कैश करा लूं, कैसे इसको भी कैसे नेकी में बदल लूं, इसको भी कैसे बदल लूं। तो ये जो सोना है, जब आप इसको कन्वर्ट करने लगेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ये चेंज होगा नेकी में, ये अल्लाह ताला नहीं देखे। अब देखिए इसके लिए इल्म चाहिए ना, अगर इल्म ही नहीं है तो फिर क्या कन्वर्जन होगी। अब अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म का भी मेरे ऊपर हक रखा और इसका भी हक मुझे अदा करना है, लिहाजा मैं सोऊंगी तो ये भी मेरी सेहत मेरे पास अमानत है, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो सेहत खराब होगी। अमानतों की अल्लाह ताला ने पूछ करनी है, लिहाजा मुझे सोना है। और फिर और भी नियत, देखिए एक से ज्यादा भी नियत कर सकते हैं ना, ये कि मुझे फजर के लिए उठना है, फिर जब मैं अगर ना सोऊं तो फिर फजर मैं उठ भी जाऊं तो फिर मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या पढ़ रही हूं क्या बोल रही हूं, मुझे तहज्जुद के लिए उठना है। अब यही जो सोना आपका 8 घंटे का है और हर रात ही आपकी यही नियत है, तो 20 साल तो आपके वैसे ही नेकी में हो गए कन्वर्ट, आपने यहीं से करवा लिए हैं। तो सोच लें कई अक्लमंद लोग होंगे कयामत के दिन जो ऐसी ऐसी कन्वर्जन करके लाए होंगे यहाँ से, ये लेके गए होंगे दुनिया से, कि वहां पे जब आएंगे तो हम उनके 20 साल तो देखो नेकी में ही गुजर गए, 20 साल की नेकी तो वैसे ही लिखी गई, बाकी कोई नादान थे वो इसी तरह आ गए, उन्होंने सोचा ही नहीं इस चीज को, नींद आ रही है सो गए हैं बस, ठीक है सब, वो तो सारे ही सोते हैं, इंसान की जरूरत है। लेकिन कुछ ने कन्वर्ट कर लिया ना, तो क्या खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने डेली रूटीन के कामों को ही नेकी बना लिया, उनके लिए कितनी कामयाबी है आखरत में। नियत की बात थी ना, और सोए वो भी और दूसरे भी सोए, लेकिन उनकी नेकी नहीं बने क्योंकि उनकी ऐसी कोई नियत ही नहीं थी। आप देखें बच्चों को पालना है, इनको संभालना है, तो बस बच्चे हैं तो अब क्या करें, फिर हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा, बस ये कोई बात तो नहीं है। आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां रखी हैं, इनका भी हक है मेरे ऊपर, ये अमानतें हैं अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। मेरे से सवाल होगा इस बारे में, और मुझे इनको सिर्फ पालना नहीं है, पाल तो आप अपने पेट को भी पाल लेते हैं, मुझे इनको सही से पालना है, इनकी सही तरबियत हो, क्योंकि मैंने इनका हिसाब देना है। ये मेरा पैसा जो है, मैं बाजार में गई हूं, अब मैं कहूं कि ये मेरे पैसे हैं, मैंने मेहनत की है, और एक मेरे जहन में क्या है, ये मेरी अल्लाह की अमानत है, इसके बारे में सवाल है। और उस इसके बारे में उसने क्या फरमाया, इसराफ नहीं करना, तबजीर नहीं करनी। तो अब वही जो भी खर्च होगा वो नेकी है। अल्लाह अकबर। अब कई लोग हैं देखें, वो सोते भी किस लिए हैं, एक ये भी होता है ना, जॉब पे सुबह को जाना है, ये भी उसकी एक नियत ही है ना, तो ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जॉब पे चले जाएंगे, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे, ये वो कन्वर्जन नहीं हुई जिस पे हम अजर चाहते हैं। तो एक-एक एक्शन को मैंने और आपने इबादत बनाना है आपसे, हमने मिलना जुलना भी अगर लोगों से, हमसाए हैं, दोस्त अहबाब हैं, दूसरे मुसलमान हैं, तो ये कन्वर्जन कर लेनी है, मैं क्यों मिल रही हूं, मैं क्यों किसी को खाना खिला रही हूं, मैं क्यों किसी को बुला रही हूं, मैं क्यों किसी के घर अफ्तारी भेज रही हूं, मुझे इससे क्या चाहिए। अगर तो ये नियत है कि भाई उन्होंने भी भेजी थी, अब हम भी भेज दें, तो बस अदले का बदला हो गया, ठीक है, फिर तो कोई अजर नहीं है। अगर ये नियत है कि जितने लोग रोजा खोलेंगे इसका मुझे अजर मिलेगा, देखो उसी की आपको कितनी बड़ी नेकी बन गई वो। तो अक्लमंद वो है, स्मार्ट वो है, जो उस बिजनेसमैन की तरह जो हर चीज में प्रॉफिट कमाने के तरीके ढूंढता है कि कहां से मेरा पैसा बन जाए। मोमिन अपनी आखिरत के बारे में इससे ज्यादा स्मार्ट होता है जितना एक बिजनेसमैन अपनी दुनिया के बारे में होता है। मुझे कैसे कन्वर्जन करनी है, मुझे कैसे प्रॉफिट बनाना है हर हर चीज में। और एक ताबेई का वाक्य आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि वो कहते थे कि मेरे घर के दरवाजे पे जब दस्तक होती है तो मैं 30 के करीब नियतें कर लेता हूँ खोलने से पहले ही। वो क्या नियतें, कि अगर कोई बच्चा होगा, यतीम बच्चा, तो मैं उसके सर पे हाथ फेरूंगा, अगर कोई औरत होगी तो मैं अपनी नजरें झुका लूंगा, अगर कोई मुसलमान होगा तो मैं उसको सलाम करूंगा, अगर कोई जरूरतमंद होगा तो मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा, अगर कोई मेहमान होगा तो मैं उसको वेलकम करूंगा, यानी इस तरह की ना बहुत सारी वो नियतें कर लेते। अब जाहिर दरवाजा खोलेंगे, कोई एक ही चीज इसमें से हो सकती है, लेकिन उनको जो 30 नियतें उन्होंने की उन सबका अजर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, बी स्मार्ट। मतलब इन चीजों के ऊपर सोचने का असल में हमें जहन में कभी, जैसे हमने कल बात की थी, इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने अजर को। और आफ्टर रमजान भी, अब जब नियत की है, अब उन्होंने दरवाजा खोला, चलो एक कोई होगा, लेकिन बाकी नियतों के अजर मिल जाएंगे, इसका एक्शन होगा उसका कई गुना मिल जाएगा। तो ये देखिए ना कितना आसान है, अल्लाह ताला की रहमत कितनी ज्यादा है कि वो नवाजना चाहता है, उसके खजाने कितने हैं कि नियतों पे भी अजर दे रहा है। तो वो हम नियत करना ही इतना मुश्किल है हमारे लिए कि हम वो अजर भी अपने लिए बिल्कुल खो रहे हैं रोज, और हमें परवाह नहीं है। 5 नमाजें पढ़ ली, 50 के बराबर है, सोचे कि मुझे 50 के बराबर अजर मिल रहा है। हर काम के लिए सोच लें कि किस तरह से मैं इसके अंदर, एक तो मल्टीपल नियतें कर लूं, मिसाल के तौर पे पानी पीने लगे हैं, पानी देखे मेरे जिस्म की वैसे ही जरूरत है तो पीना तो है ही, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, तो पानी को मुझे जाया नहीं करना। वे दूसरे मेरी सेहत के लिए जरूरी है, मैंने आपको अभी बताया सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, नेमतों का सवाल होगा, मैंने इस सेहत को गंवाना नहीं है। और फिर देखें इसे मेरी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी तो अल्लाह ताला को कवी मुसलमान ज्यादा पसंद है उससे जो कमजोर नहीं सा हो। फिर एक और ये नीयत कि भी मैं ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत बेहतर तौर पे कर सकूंगी अगर मेरी सेहत होगी, सेहत नहीं होगी तो फिर क्या। हम बाकी सब चीजों के लिए सोचते हैं सेहत होगी तो हम कमाइयां कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, ये कर सकेंगे, कभी ये भी सोचते हैं सेहत होगी तो मैं अच्छी अल्लाह ताला की इबादत कर सकूंगी। वो सेहत भी ये नीयत, इस नीयत के लिहाज से आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देती हैं और सेहत के लिए अच्छा रखने के लिए कोशिश करती हैं, वो सारा अजर बन गया। आप पानी के पीने के लिए आपने ये नियति की, इसके अलावा भी है हमें राइट हैंड से पीती हूँ, इस राइट हैंड से पीने से मुझे सुन्नत का भी अजर मिल गया, मैं बैठ के पीती हूँ उसके ऊपर भी अजर मिल गया, मैं 3 घूंट में पीती हूँ उससे भी अजर मिल गया, मैं ग्लास में सांस नहीं लेती उससे भी अजर मिल गया। तो सिर्फ पानी पीने पीने में ही कितने सारे सवाब ले लिए। तो इसी तरह हर चीज के अंदर है। और हम उसको कन्वर्ट यहीं करें और इसके लिए हम इल्म भी लें, जितना आपके पास इल्म होगा उतनी कन्वर्जन आसान होगी ना, वरना कन्वर्ट क्या करेंगे, किस चीज़ की नियत करेंगे। और जब आप मसनून काम करते हैं तो फिर तो और ज़्यादा आपका अजर, यानी उन नियतों के साथ करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किया करते थे, ऐसे किया करते थे, मैंने भी ऐसे करना है। अब वही पानी आप पी रहे हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पीते थे, तो मैंने पीना तो है ही लेकिन इस नियत के साथ पिया। अब राइट हैंड से मिसाल के तौर पे कोई काफिर भी पी रहा है, आप भी पी रहे हैं, कोई फर्क है कि नहीं है। उसने कोई नियत नहीं की, उसने बस उसका ऐसे उठाया पी लिया, वो किसी हाथ से तो उठाना ही था, बाएं से नहीं उठाया तो दाएं से उठा लिया, लेकिन आपकी नियत ये थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ से पानी पीते थे, मैंने भी इसी से पीना है और इसी को अपनी आदत बनाया था आपने, तो आपका अजर लिखा जाएगा। हालांकि दोनों ने पानी पिया मगर एक को अजर मिल गया, एक को कुछ भी नहीं मिला। और सुन्नतों पे तो अमल करने का ये ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ऐसी सुन्नत को जिंदा करता है, जो सुन्नत जो है लोगों के अंदर बिल्कुल भुला दी गई है, छोड़ दिया लोगों ने उसको, जबकि उम्मत के अंदर फसाद का वक्त हो तो उसको 1,000 शहीदों का अजर मिलेगा। ये बड़ी बात है कि इंसान हर काम में सोचे कि मैं सुन्नत के मुताबिक करूं ताकि उस तरह से मुझे अजर मिलता रहे। आप अपना घर बनवा रहे हैं, टॉयलेट को देखें कि आपने इस तरह से नहीं बाथरूम में बनवाना कि किबला रुख हो और उस तरफ को बैठा जाए, आपको अजर मिल गया। एक सहाबी थे ना, तो अपने घर में कुछ मरम्मत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, देखा, पूछा क्या कर रहे हैं, कह रहे रोशनदान बना रहा हूँ, किस लिए, तो कहते हैं हवा है। आपने फरमाया अगर तुम ये नियत कर लेते ना कि यहाँ से अजान की आवाज़ आए तो इसके ऊपर अजर मिलता। रोशनदान तो बनना ही था, मसलन आप खिड़की निकाल रहे हैं, मसलन आप कोई भी वो चीज़ तो आपने करनी ही होती है, लेकिन वही चीज़ अजर का बाइस बन जाती है। तो ये वो ही कर सकता है जो कॉन्शियस लाइफ गुजारे, जिसके माइंड में ये हो उस बिजनेसमैन की तरह कैसे मैंने नेकियां अपनी बढ़ानी हैं, मेरी मंजिल जन्नत है, वो महंगा सौदा है, उसके लिए मुझे अभी से काम करना है, मुझे मौका कोई हाथ से जाने नहीं देना है, मैंने प्लानिंग भी करनी है, मैंने उसके मुताबिक भी काम भी करना है। और ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हर वक्त आप 24 घंटे मुसल्ले पे बैठे हुए, ना ही आप को ये हुक्म कोई दिया गया कि आप यही काम करें, लेकिन बाकी जितने आप काम करें वो सारे ही इबादत आपके बन जाए। आपका नजर उठाना इबादत बने, नजर झुकाना इबादत बन जाए, आपका घर से कदम बाहर निकालना इबादत हो, आपका लोगों से मेल जोल इबादत हो, आपका किसी से बात करना इबादत हो, आपका रिस्क हलाल कमाना इबादत हो, सारी चीजें इबादत बन सकती हैं। सारी चीजें बाईस अजर बन सकती हैं, नेकियां बन सकती हैं। और ऐसा इंसान जो ऐसी नियतें करता रहे, वो कितनी नेकियां लेकर आएगा सोचे, एक दिन में कितने कामों पे उसने कितनी प्यारी प्यारी नियतें की। तो सारा दिन ही उसके एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहा। तो ये करना है हमने आज से इंशाल्लाह, अगर नहीं करते थे तो अब कॉन्शियसली करना है और उसको भुलाना नहीं है। सिर्फ ये रमजान का अमल नहीं है, इसके बाद का जिंदगी भर का अमल है। और आज तो चूंकि जुमा की रात है, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे ज्यादा जो हमने पढ़ना है दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको पता है कितनी सारी बलाएं, इमाम इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कितनी सारी वबाएं और कितने सारे मसाइल मुसीबतें इंसान की सिर्फ दुरूद शरीफ की कसरत से ही सॉल्व हो जाती हैं, या मुसीबतें टल जाती हैं, हट जाती हैं। दुरूद शरीफ इतनी बाबरकत चीज है, तो दुरूद शरीफ को जरूर पढ़ें। दूसरी ये कि अब ये जैसे रात से लेके आप पूरा दिन जुमे का आप जुबान के ऊपर दुरूद शरीफ हो, इसके अलावा सूरह कहफ का पढ़ना। सूरह कहफ जो पढ़ेगा, एक तो फितना दिज्जाल से भी महफूज होगा, और ये देखिए आप हफ्ते में किसी और दिन भी पढ़ें, ये वाला जो फायदा है ना सिर्फ जुमे को पढ़ने का ही है। सोचिए, इमेजिन करें कि आप सैटरडे को पढ़ रहे हैं, आप संडे को पढ़ रहे हैं, वो वाली बातें जिस वक्त जिस चीज का कहा गया उस वक्त ही करना है। जैसे आपको डॉक्टर देता है ना गोली, आपने सुबह को खानी, निहार मुंह खानी है, आ कहते इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं दोपहर को खा लेती हूँ। नहीं, कुछ उसके फवायद होंगे ना, तो ये पढ़नी जुमे को ही है। लिहाजा मेक श्योर करना है कि ये मैं पढ़ूं, इसलिए कि कयामत के दिन जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है ना, कयामत के दिन उसके लिए नूर होगा, क्योंकि वो बहुत सख्त अंधेरे का दिन है। और उसके कदम से लेके आसमान तक ऐसा नूर बुलंद होगा, उसके लिए रोशनी बन जाएगा। तो अंधेरे किसी को पसंद नहीं है, उस दिन के अंधेरों से बचने का भी सामान यहां से लेकर जाना है। वहां पे लाइट नहीं मिलती, हाँ जी, वहां पे कोई जगह पे लाइट खरीद के नहीं ला सकते। सूरह कहफ पढ़ा करें जुमे वाले दिन। और किस किस को नूर मिलता है? जो ईमान की हालत में बूढ़ा हो उसको भी मिलता है, जो अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल के जाता है। अंधेरों की नमाजें कौन सी हैं? फजर और ईशा, ये तो सबसे ज्यादा मुनाफिक के ऊपर भारी होती थी। तो इन औकात में जो मस्जिदों की तरफ चल के जाता है उसको भी नूर मिलेगा, जो नमाजों की हिफाजत करता है उसके लिए भी नूर होगा। तो नूर कमाने के तरीके बता दिए गए हैं, बात यह है कि अब हम इनके मुताबिक अपने लिए यहां से नूर ले लें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। उसके अलावा हमने जो दरूद शरीफ पढ़ना है वो, इसके अलावा, और इसके अलावा जो हमारी दुआ है लैलतुल कदर की, वो हमने मांगते रहना है। तो इस तरह आप देखेंगे, ये कभी वो दुआ करें लैलतुल कदर की जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्फा फ़ाफ़ अन्ना, कभी दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह से करके हमारे ये जो जुमे की रात खास तौर पे है, इसके साथ गुजरनी चाहिए। और जब कुरान को लें तो सबसे पहले सूरह कहफ पढ़ के फिर आगे जब आपने अपना जितना भी कुरान पढ़ना है वो उसके बाद है। लेकिन जुमा कब से शुरू हो जाता है, उसकी रात कब से शुरू होती है? जिसको हम थर्सडे नाइट कहते हैं, यानी थर्सडे को जब मगरिब हो जाएगी तो वहाँ से जुमे की रात स्टार्ट हो जाती है, और जुमे की मगरिब तक रहती है, यानी ये दिन रहता है। तो ये इसके दौरान आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, तो बेहतर ये है कि इसको हम पहले ही पढ़ लें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने हर अमल को नेकी में बदल सकें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो सारे काम कर सकें जिनसे वो राज़ी होता हो, और हम अव्वल वक्त के अंदर ही सफ़र शुरू कर दें बजाय कि हम डिले करते रहें, कल करेंगे ना परसों करेंगे, तरसों करेंगे और कल, ये कल 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 कल, कल करते करते ज़िंदगी गुजर गई है। ये हम उनमें से हों जो अव्वल वक्त में सफ़र शुरू कर दें ताकि मंजिल तक टाइम पे पहुंच सके। अल्लाह ताला का महंगा सौदा हम भी ले सकें। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।